लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी श्रमिकों को सम्मान एवं अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाए तथा बेरोजगारों को जन कल्याण हेतु योगदान का अवसर मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थाई है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 89वें भजन के प्रथम पद। इन्हीं पदों के पाठ से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 88वां भजन हताशा में ईश भक्त की प्रार्थना है, जबकि 89वें भजन में ईश भक्त प्रभु ईश्वर की अनुपम शक्ति और उनकी सत्य प्रतिज्ञता को पहचानते हुए उनका स्तुतिगान करता है। कहता है, मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिर स्थाई है। तूने कहा, मैं कृपा पात्र दाऊद से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूँगा, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है। श्रोताओं, स्तोत्र ग्रंथ के अधिकांश भजन गिला शिकवा, रुदन और विलाप के साथ शुरू होते हैं और हर्षोल्लास एवं स्तुतिगान के साथ समाप्त होते हैं, जबकि 89वां भजन गुणगान और प्रशंसा के साथ शुरू तो होता है किंतु दुखद शिकायतों और याचिकाओं से समाप्त होता है। भजनकार पहले तो ईश्वर के एहसानों, उनकी दया और उनकी अनुकंपा का बखान करता है और फिर अपनी वर्तमान व्यथा को उनके समक्ष रखकर विलाप करता है।
टूटा हुआ मेरा मन प्रभु पापों से भरा है, जाओ कहाँ मेरे प्रभु, तू ही मेरा आसरा है। टूटा हुआ मेरा मन प्रभु पापों से भरा है, जाओ कहाँ मेरे प्रभु, तू ही मेरा आसरा है।
बाइबल आचार्यों ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि स्तोत्र ग्रंथ का 89वां भजन कब रचा गया था। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि यह उस समय रचा गया था जब दाऊद के वंश पर गहन निराशा और हताशा छाई हुई थी। कुछ बाइबल पंडितों का मानना है कि यह बाबुल के निष्कासन काल में रचा गया था, जब राजा जिदकिया पर क्रूर नबूकदनेस्सर का दमन चक्र चल रहा था। इस भजन के बारे में यह भी बताया गया है कि यह जेराह के पुत्र इज्राही एतान का गीत है, जिसे तत्कालीन संगीतज्ञों ने स्वर दिया। एतान का जिक्र हमें सुलेमान की कहानी में मिलता है, जो इस गौरवशाली राजकुमार के बाद दाऊद के वंश के विरुद्ध 10 जनजातियों के विद्रोह और अपमान के दुख को सह नहीं पाया था।
मार्ग जिसमें मैं चला हूं वो अंधेरा है, मार्ग जिसमें मैं चला हूं वो अंधेरा है, मेरे जीवन की गली में ना सवेरा है, ओ प्रभु राह दिखाओ मुझको, प्रभु राह दिखाओ मुझ, तेरा ही दे प्रेम भरा है, टूटा हुआ मेरा।
आगे 89वें भजन का रचयिता दाऊद के वंश पर आ पड़ी विपत्तियों के लिए दुखी है, किंतु इसके बावजूद वह ईश्वर के प्रशस्त गान से अपना भजन शुरू करता है और एक प्रकार से हम सबको याद दिलाता है कि भले ही हमारी व्यथाएं असहनीय हों, हमें सब में सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं तो प्रायः हम शिकायत करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा दुख हल्का हो जाएगा, किंतु हम भ्रम में पड़े हैं। शिकायत से दुख कम नहीं होता, बल्कि जो कुछ मिला है, जो हमारे पास है, उसी में संतोष कर प्रभु ईश्वर की स्तुति करने में सच्चा आनंद मिलता है। अस्तु श्रोताओं, अपनी शिकायतों को हम प्रशंसा और स्तुतिगान में परिणित होने दें, क्योंकि प्रभु ईश्वर भले हैं, प्रभु ईश्वर दयालु हैं, वे सच्चे हैं, जो अवश्य ही हमारी विनती सुनते हैं। हालांकि अपने संकट भरे क्षणों में हमें ईश्वर की भलाई और उनकी सच्चाई नजर न आए, फिर भी हमें इस सिद्धांत को सदैव याद रखना चाहिए कि ईश्वर असीम प्रेम है, ईश्वर की दया अपार है, उनका सत्य परम पावन है, और यही सिद्धांत हमारे आनंद का आधार और हमारे हर्षोल्लास का कारण है। आगे 89वें भजन के 10 से लेकर 14 तक के पदों में ईश्वर को संबोधित कर भजनकार कहता है, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है, तूने रहब पर घातक प्रहार किया और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, तूने संसार और उसके वैभव की स्थापना की, तूने उत्तर और दक्षिण की सृष्टि की, ताबोर और हेरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं, तेरी भुजा शक्तिशाली है, तेरा हाथ सुदृढ़, तेरा दाहिना हाथ प्रतापी है। श्रोताओं, इन पदों में मानव भजनकार पुनः धरती पर लौटता है। इससे पहले उसने ईश्वर को विश्व मंडल के प्रभु, स्वर्गिकों की सभा में महाप्रतापी आदि शब्दों से संबोधित किया था, किंतु अब वह इस धरती पर संपादित ईश्वर की महान रचना के प्रति अभिमुख होता है। वह स्मरण दिलाता है कि ईश्वर की महिमा स्वर्ग से लेकर धरती के ओर छोर तक छाई हुई है। हम सब जानते हैं कि महासागर विशाल होता है और मनुष्यों के समक्ष अपरिमित और अपराजित प्रतीत होता है, किंतु भजनकार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि प्रभु ईश्वर के समक्ष महासागर भी कुछ भी नहीं है। कहता है, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्यंड लहरों को शांत करता है। उसी प्रकार जैसा कि ईश पुत्र येसु ख्रीस्त ने समुद्र के प्रचंड तूफान को रोक दिया था, वे ऐसा कर सके क्योंकि वे स्वयं ईश्वर थे। 11वें पद में भजनकार रहब का जिक्र करता है। होशिया के ग्रंथ के अनुसार रहब एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या थी जो जेरिको में रहा करती थी। वह इजरायली सैनिकों से जासूसों की भी रक्षा किया करती थी। इस ग्रंथ के अनुसार रहब के दुष्कर्मों के कारण रहब को दंडित करने की भविष्यवाणी की गई थी, किंतु उसने पश्चाताप किया, अपने पापों की क्षमा मांगी और ईश्वर की कृपा पात्र बनी। और फिर इसराइल के पहाड़ जैसे ताबोर और हेरमोन द्वारा ईश्वर के जय जयकार का उल्लेख कर भजनकार ने इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया है कि पहाड़ जय जयकार नहीं करते, अपितु जब जब हम पहाड़ों को देखते हैं तब तब हम ईश्वर की सृष्टि पर आश्चर्य व्यक्त करते और ईश्वर की प्रशंसा का गीत गा उठते हैं।